ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में प्रकृति के पास परिवार के साथ थीम पर आधारित 3 नए शहरी वन विकसित किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए कल येलो लाइन पर देर रात की मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय डाक विभाग ने लोगों से अपने प्रियजनों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेजने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ दिल्ली में शहरी वन विकसित कर रही है। दिल्ली में प्रकृति के पास परिवार के साथ थीम पर अलग अलग क्षेत्रों में 3 नए शहरी वन विकसित किए जाएंगे। ये वन गढ़ी मेंडू, लालकुआं और उजवा में विकसित किए जाएंगे। श्री राय ने बताया कि शहरी वनों का पर्यावरण के अनुकूल विकास किया जाएगा और सरकार का लक्ष्य लोगों को एक ऐसा स्थान देना है जहां वे प्रकृति का आनंद ले सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 64 लाख से ज्यादा पौधे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपदा के रूप में उभरा है और दुनिया भर में सामुदायिक पतन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन गरीबों, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग विषय पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल का 3R सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक युद्ध है। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत इस दिशा में गंभीरता से काम करने वाली अग्रणी देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।
We have set a target to achieve 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2030 and achieving net zero by 2070. You will be happy to note, India is among lead nations to be working earnestly in this direction. India has set this target and working for it in a significant manner by taking several affirmative steps of policies and innovation.
आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष जेबी गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कई पहल की हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा चाणक्यपुरी की टीम ने दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सरगना सहित सिंडिकेट के 15 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 34 नकली स्टैंप, 17 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 9 सिम कार्ड, एक लग्जरी कार और मरीजों तथा किडनी प्रत्यारोपण के दाताओं की जाली दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जाली आईडी बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी पहले प्रतिष्ठित अस्पतालों में प्रत्यारोपण सह समन्वयक के रूप में नौकरी लेते थे और फिर किडनी प्रत्यारोपण के लिए संबंधित अस्पताल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सीखते थे। इसके बाद वे विभिन्न अस्पतालों में किडनी रोग से पीड़ित और इलाज करा रहे मरीजों की पहचान करते थे। आरोपी सोशल मीडिया से दानदाताओं से संपर्क कर उनकी खराब वित्तीय पृष्ठभूमि का फायदा उठाते और किडनी देने के लिए 5 से 6 लाख रुपए देने के बहाने उनका शोषण करते थे। अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि सिंडिकेट ने अलग अलग राज्यों के 11 अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट में सफलता हासिल की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से आरके आश्रम कॉरिडोर के 490 मीटर लंबे खंड पर नियोजित कार्य के चलते पीली लाइन पर कल देर रात के लिए मेट्रो ट्रेन सेवाओं के समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC की विज्ञप्ति के अनुसार समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर अंतिम मेट्रो कल रात 10:45 तक चलेगी, जिसका पहले समय 11 बजे था। वहीं मिलेनियम सिटी सेंटर से रात 11 बजे की बजाय आखिरी मेट्रो 9:30 बजे रवाना होगी। रविवार की सुबह समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम के लिए पहली मेट्रो सुबह 6 बजे के बजाय 7 बजे चलेगी। वहीं समयपुर बादली और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के बीच शनिवार रात 11 बजे से रविवार सुबह 7 बजे तक कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94वें विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण में ये पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। श्री सचदेवा ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी से पूछा कि दिल्ली सरकार जिस शिक्षा क्रांति की बात करती है उसमें लगातार बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 लाख से अधिक बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो गए हैं और उसमें भी 17,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो लगातार दूसरी बार फेल हुए हैं। श्री सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार का एक मॉडल बन चुकी है।
क्यों दिल्ली के बच्चे फेल हो गए? ये तो 9th क्लास का है, 11वीं क्लास का भी हाल ऐसा ही है। 2019-20 में जहां 1200 बच्चे फेल हुए थे और 2023-24 तक आते आते वो 51,914 लगभग 52,000 बच्चे हुए। और आप बात करते हैं कि पूरे विश्व में आइए देखिए दिल्ली की शिक्षा क्रांति हुआ, ये क्रांति नहीं है, ढुकंती है, भ्रष्टाचार है, ये दिल्ली के भविष्य खराब कर रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए पार्किंग सुविधाएं प्रदान करेगी। RRTS स्टेशनों पर तैयार किए जा रहे इन पार्किंग स्थलों पर 8,000 से अधिक वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। इससे यात्री अपने निजी वाहनों को पार्किंग में खड़ा कर नमो भारत ट्रेनों की सुलभ और सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। RRTS कॉरिडोर पर दिल्ली से मेरठ के बीच 25 स्टेशन हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के छात्रों के लिए चल रहे आकलन शिविर का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि देश के हर कोने से खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं देकर निखारा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में देश भर से 1 लाख खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले 20,000 छात्रों का चयन कर उनकी खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। भारतीय डाक विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने प्रियजनों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेज दें। विभाग ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग की जटिलताओं से निपटने और देरी तथा सीमा शुल्क संबंधी बाधाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए यह सलाह दी है। पैकेट को सही तरीके से बंद किया जाना चाहिए और सटीक कोड के साथ सही पता लिखना चाहिए। विभाग ने लोगों को अपना मोबाइल नंबर बताने की सलाह दी है। लोगों से ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ या खराब होने वाले सामान जैसे प्रतिबंधित वस्तुएं भेजने से बचने को कहा गया है। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में हुई तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसने विश्व भर में कई व्यवसायों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के आईटी नेटवर्क को प्रभावित किया है। दिल्ली सहित देश के कई हवाई अड्डों पर विभिन्न एयरलाइंस इस तकनीकी खराबी के कारण अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी नई कई उड़ानों को रद्द किया है, वहीं अन्य उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिला है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनका मंत्रालय इस संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस रूकावट के कारण की पहचान कर ली गई है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर मामले में केवल 10 बैंकों और एनबीएफसी में बाधा थी, जिन्हें सही कर लिया गया है या किया जा रहा है। आरबीआई ने कहा कि अधिकांश बैंकों के महत्वपूर्ण सिस्टम क्लाउड में नहीं है और इसके अलावा केवल कुछ बैंक ही क्राउड स्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक के क्षेत्र में भारतीय वित्तीय क्षेत्र इससे अछूता है। रिजर्व बैंक ने सतर्क रहने और परिचालन लचीलापन और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संस्थाओं को सलाह जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की अनुशंसित उम्मीदवार पूजा खेड़कर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना नाम, पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान फर्जी बनाकर परीक्षा नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करके आपराधिक मुकदमा शुरू कर दिया है। दिल्ली हाफ मैराथन का 19वां संस्करण 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रात 11:59 तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस हाफ मैराथन में भाग लेने के लिए 20 सितंबर 2024 की रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। एशियाई खेलों की लंबी कूद की रजत पदक विजेता एनसी सोजन एडापिल्ली ने दिल्ली हाफ मैराथन को समर्थन दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से दोगुना शुल्क वसूल करने को कहा है। राजधानी में आज ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा। आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रकृति के पास परिवार के साथ थीम पर आधारित 3 नए शहरी वन विकसित किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राज्यीय अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के लिए कल येलो लाइन पर देर रात की मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। भारतीय डाक विभाग ने लोगों से अपने प्रियजनों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेजने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।